नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं जनसत्ता पॉडकास्ट। मनोरंजन की दुनिया में क्या चल रहा है, जानते हैं इस बुलेटिन में। कुछ निर्देशक एक पूरी फिल्म इंडस्ट्री को दूसरे स्तर तक ले जाते हैं। देश विदेश में उनकी फिल्म की प्रशंसा होती है। ऐसे ही एक निर्देशक हैं मणिरत्नम। आज मणिरत्नम का जन्मदिन है। इस निर्देशक को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। ये बॉलीवुड, कॉलीवुड और टॉलीवुड में अब 3 दशकों से अद्भुत फिल्में बना रहा है। निर्देशक जिसे सिनेमेटिक जीनियस के रूप में जाना जाता है, मणिरत्नम सही मायने में इस टैग को परिभाषित करता है जैसे कोई और नहीं। रोमांस हो या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी, मणिरत्नम का हर किरदार दृश्य को चित्रित करने का तरीका आपके दिल को छू जाएगा। वह हर विधा, रोमांस, राजनीति, ऐतिहासिक या पौराणिक के उस्ताद हैं। जबकि एक ऐसे परिवार से आना जहां फिल्मों को शीर्ष फिल्म निर्माताओं में से एक बनने के लिए वर्जित माना जाता था। मणिरत्नम की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। उन्होंने अनिल कपूर और लक्ष्मी अभिनीत कन्नड़ फिल्म पल्लवी अनुपल्लवी के साथ निर्देशक के रूप में अपनी शुरुआत की। हालांकि वह रोजा 1992, बॉम्बे 1995 और दिल से 1998 से मिलकर अपनी आतंकवाद त्रयी के लिए प्रसिद्धि के लिए बढ़े। इन फिल्मों ने दर्शकों को घर वापस जाने के बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ दिया और 90 के दशक में ये बहुत दुर्लभ था। बॉलीवुड में नेपोटिज्म हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। जहां कई स्टार किड्स भाई भतीजावाद के खिलाफ अपना बचाव करते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने खुले तौर पर इसे बिना किसी अगर या लेकिन के स्वीकार कर लिया। 99.7 में सलमान खान को दुनिया के 10 सबसे सुंदर पुरुषों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था। हालांकि जब सुपरस्टार से उनकी सूची के बारे में पूछा गया तो उन्हें कहते हुए पाया गया, मैंने वह समाचार भी पढ़ा और प्रशंसा को अपनी प्रगति में लिया। मैं उन लोगों को नहीं जानता जिन्होंने मुझे ये उपाधि दी। वास्तव में मैं इस पर विश्वास नहीं करता। बांद्रा में जहां मैं रहता हूं, वहां हजारों लड़के हैं जो मुझसे बेहतर दिखते हैं। जब मैं उन्हें देखता हूं, सोचता हूं काश मैं उनके जैसा दिखता। खान ने आगे कहा कि वह सलीम खान के बेटे होने के लिए भाग्यशाली हैं और वह इस उद्योग में है। अगर मैं अपने पिता के घर में पैदा नहीं होता तो भगवान जाने मैं आज क्या कर रहा होता। सलमान खान ने कहा, मैंने इस उपाधि को अर्जित करने के लिए कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं इस तरह पैदा हुआ था तो मैं इसका श्रेय क्यों लूं? कुछ ऐसा जिसके लिए मुझे अपनी छोटी उंगली भी नहीं हिलानी पड़ी। मैं उन चीजों को महत्व देता हूं जो मैंने अर्जित की हैं, चाहे वे दूसरों को कितनी भी महत्वहीन क्यों ना हों। प्रियंका चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया स्पेस पर गायक केके के निधन पर दुख व्यक्त किया। महान संगीतकार और एक पूरी पीढ़ी की आवाज के रूप में छाए कृष्ण कुमार कुन्नाथ या केके ने 31 मई को अंतिम सांस ली। बता दें कि केके कोलकाता के नजरुल मंच में एक लाइव कॉन्सर्ट कर रहे थे। अस्वस्थ महसूस होने पर वह अपने होटल गए और उसके तुरंत बाद उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हें कोलकाता के CMRI अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें आगमन पर मृत घोषित कर दिया। उनके असामयिक और दुखद निधन की खबर जैसे ही ऑनलाइन सामने आई, लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना दुख व्यक्त किया। दूसरों के बीच प्रियंका चोपड़ा ने भी दिवंगत संगीतकार का एक वीडियो साझा किया और कुछ हार्दिक शब्द लिखे। कुछ घंटे पहले प्रियंका चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया स्पेस में केके के एक संगीत कार्यक्रम में मंच पर प्रदर्शन करते हुए का वीडियो साझा किया। पोस्ट को साझा करते हुए अभिनेत्री ने दिवंगत कलाकार के परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने नोट में लिखा, गॉन टू सून, आज शोक करने वाले सभी लोगों के प्रति संवेदना, रेस्ट इन पीस केके, हाथों को जोड़कर इमोजी, हार्ट ब्रेक इमोजी। जैसे ही प्रियंका ने वीडियो पोस्ट किया, कुछ प्रशंसकों ने कमेंट सेक्शन में रिएक्ट किया और अपना दुख भी व्यक्त किया। अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के रिलीज होने से पहले न्यूज एजेंसी ANI को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने फिल्म से जुड़ी बातों के अलावा देश की शिक्षा प्रणाली, इतिहास पर बात की। इंटरव्यू के दौरान अक्षय कुमार ने सरकार से बच्चों को देश के राजाओं के बारे में पढ़ाने की अपील की। ANI से बात करते हुए अक्षय कुमार ने कहा कि हमारे इतिहास की किताबों में पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखने वाला कोई नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री से अपील करना चाहूंगा कि इस मामले को देखें कि क्या हम इतिहास को संतुलित कर सकते हैं। हमें मुगलों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारे राजाओं के बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए, उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए, वे भी महान थे। सत्य सारथी नाम के यूजर ने लिखा कि अगर स्कूल की पढ़ाई कनाडा की जगह भारत में किया होता तो न केवल मुगलों बल्कि भारत के 5000 सालों के इतिहास को भी जान लिया होता। सोनाली बेंद्रे ने साल 1994 में फिल्म आग से डेब्यू किया था। हाल ही में एक इंटरव्यू में सोनाली से छोटे बजट की फिल्मों के बारे में सवाल किया गया था, जिस पर एक्ट्रेस ने कहा था कि पैसे की कमी के कारण उन्हें ऐसी फिल्मों में काम करना पड़ा। सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत में सोनाली ने कहा, मुझे पैसे की जरूरत थी, घर का किराया और बिल का भुगतान करने के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। उस वक्त मेरा परिवार बुरे दौर से गुजर रहा था, मैं इस लाइन में इसलिए आई थी ताकि मैं पैसे कमा सकूं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। ये पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है। अगले बुलेटिन तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।